नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
The United Kingdom Free Trade Agreement has...
भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
And together becoming a force multiplier.
श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।